दुनिया में आज भी तुमको पाए, ऐसा लगता बाहे पसारे सामने हो आए। हो भागीरथ वन बाबा ज्ञान गंगा बहाया, अपने ही कर्मों द्वारा जग को स्वर्ग बनाया। आँखें भर आती सोच तेरे एहसान की, आँखें भर आती सोच तेरे एहसान की, आज भी भर रहे हैं झोली तेरे प्यार की। ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा कितने निरहंकारी, ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा कितने निरहंकारी।
दीदी आपकी वॉइस नहीं आ रही है
अभी।
आ रही है।
ओम शांति। जनवरी मास आते ही तपस्या करना शुरू करते हैं, ब्रह्मा बाबा के पद चिन्हों पर चलने की कोशिश करते हैं। ब्रह्मा बाबा त्याग तपस्या और सेवा की प्रतिमूर्ति थे। हर रोज बाबा सवेरे 2 बजे उठते थे। ब्रह्मा बाबा को देख करके मम्मा भी हर रोज 2 बजे उठते थे और तपस्या में बैठते थे, आत्मचिंतन करते हुए पूरे संसार को सुख और शांति के वाइब्रेशंस फैलाते थे। बाबा के जीवन कहानी अगर देखें कि ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा दोनों कंबाइंड रूप में हमेशा रहते थे। कोई भी बच्चे बाबा को हंसी मजाक में अगर कहते हैं कि बाबा आप इतने बिजी रहते हो, शिव बाबा को कभी आप भूलते हैं, तो बाबा मुस्कुराते हुए उत्तर दिया करते थे, क्या बाबा शिव बाबा को भूलने की चीज है, बाबा तो है ही मेरे साथ, भूल कैसे सकता हूं। इतने बच्चों को संभालते हुए भी बाबा के चेहरे पर कभी भी टेंशन के लकीरें हो या फिर शिकन हो तो ऐसे कोई रेखा मात्र भी दिखाई नहीं देता था। तो इसीलिए बाप और दादा दोनों को हम याद करते हैं। शिव बाबा की प्रवेशता के बाद जैसे बाबा के चरित्र में देखते हैं, अलौकिक, बहुत चरित्र अलौकिक दिखाई देता था। ये कहना भी मुश्किल होता था कि कौन से कार्य शिव बाबा के थे और कौन से ब्रह्मा बाबा के हैं। ब्रह्मा बाबा का शिव बाबा से गहरा योग था, दोनों में ऐसा दोनों ऐसे कंबाइन थे कि मानो एक दूसरे की राय के बिना अथवा एक दूसरे से अलग होकर वे कोई कार्य करते ही नहीं थे। उनमें जैसे समीपता ऐसा था कि ये कभी नहीं होता था कि अलग अलग जाकर के वो काम कर रहे, अलग अलग डिसीजंस ले रहे हैं, ऐसी बात नहीं होती थी। मन से, बुद्धि से, गुणों से वे एक दूसरे के जैसे निकट जुड़े हुए होते थे, ऐसे लगता था वो जुड़वे हैं, कभी भी वो अलग नहीं हो सकते। इसलिए शिव बाबा हमेशा कहते थे मैं आकर के यहाँ ब्रह्मा के सिंहासन पर आकर के मैं बैठता हूँ। इनके कर्तव्य भी एक रूप से ऐसे ही होता था कि ब्रह्मा बाबा का साकार रूप ही जैसे शिव बाबा का भी साकार रूप था। ब्रह्मा बाबा को देखते थे ऐसा लगता था कि शिव बाबा को देख रहे हैं, ऐसे ब्रह्मा बाबा कोई कार्य करते थे ऐसा नहीं लगता था कि शिव बाबा वहां उपस्थित नहीं है। तो दोनों एक साथ साथ होते थे। ऐसा समीपता और ऐसे सामंजस्य थी दोनों के इसमें, बाप और दादा में। इन विशेषताओं के कारण से ही आज भी अव्यक्त बाप दादा का ये कंबाइंड रूप हम हमेशा याद करते हैं, कभी भी अलग अलग याद नहीं करते, दोनों को हमेशा एक साथ याद करते हैं। तो हमें भी बाबा के साथ कंबाइंड रहने की प्रेरणा हमें लेने की जरूरत है, क्योंकि संगम युग ऐसा अमूल्य समय है कि बाप दादा अभी हमें मिल रहे हैं, हम भी ब्रह्मा बाप समान शिव बाबा के साथ कंबाइंड स्थिति का अनुभव हम अभी से करने की कोशिश करें। यज्ञवत्स सभी ब्रिज कोटि में आए और वहां से जो भी तपस्या कर रहे थे, वैसे तो 14 साल कराची में तो किया ही, लेकिन यहाँ आने के बाद एक नया रूप यज्ञ का नया रूप शुरू हो गया था। ब्रिज कोटी में रहते हुए दिनचर्या भी ऐसा ही चलता था, सुबह अमृत वेले उठते थे और फिर मुरली क्लास सभी सुनते थे बाबा से, फिर उसके बाद बाबा सभी को सैर करने लेके जाते थे पहाड़ियों पर, कराची में तो सागर किनारे लेके जाते थे, यहाँ माउंट आबू में पहाड़ियों पर, अलग अलग पहाड़ियों पर बाबा लेके जाते थे। इतने बड़े ग्रुप में सफेद वस्त्रधारी जा रहे हैं तो लोग देखकर क्या हैरान होते थे, इतना बड़ा झुंड, इतना बड़ा ग्रुप कहाँ से आ गया, श्वेत वस्त्रधारिणी भाई बहने यहाँ आए हुए। कभी बाबा की पहाड़ी पर लेके जाते थे, कभी टोड रॉक पर लेके जाते थे, तो अलग अलग जगह पर बाबा सैर करने लेके जाते थे। और बाबा जब भी लेके जा, उनका आयु करीब 70 साल से भी ऊपर हुआ करता था, फिर भी बाबा की जो स्पीड थी, चलने की जो स्पीड थी, सबसे आगे हुआ करता था। परंतु बाबा के साथ होने के कारण से सभी भाई बहने खुशी खुशी से बाबा के पीछे पीछे भागते थे। बाबा बहुत अपना पितृ वात्सल्य सभी को दिखाते भी थे। ऐसा नहीं कि हाँ चारों दीवारों के बीच में बैठ करके ज्ञान सुनाए सुनाए, नहीं वो भी सुनाते थे, लेकिन फिर पिकनिक भी कराते थे, ले जाकर के पहाड़ियों पर शमशान, जैसे आप चित्र में देख रहे हैं कि बाबा को लिटाते थे सभी को, जैसे शमशान में मरे पड़े हैं, ऐसे उसका भी बाबा अनुभव कराते थे। और वहां जाकर के जब तपस्या में बैठते थे, कहीं भाई बहने ट्रांस में चले जाते थे, रास करने लग जाते थे, वहां पहाड़ियों के बीच में कोई भी तमोगुणी वातावरण, कोई कलयुगी आत्माओं के वाइब्रेशंस वहां नहीं आता था, वहां सत्व प्रधान वातावरण में बैठ करके तपस्या किया करते थे। और बाबा बहुत प्यार से मीठे मीठे बच्चों दुलारो करके फिर बुलाते थे, बहुत प्यार से सभी को दृष्टि से निहाल करते थे। कभी बाबा बच्चों की अंगुली पकड़ करके लेके जाते थे, कभी बाबा अपने अंगुली बच्चों को देते थे पकड़ करके चलने के लिए, कभी कभी बाबा ग्रुप के आगे हो जाते थे और कहते थे मैं तो पंडा हूँ मेरे पीछे पीछे आओ, और कभी कभी बाबा कहते नहीं मैं सबसे पीछे आता हूँ क्योंकि मैं तो ग्वाला हूँ, गायों को अगर नहीं तो फिर गैया इधर उधर भाग जाएंगी। तो ऐसे रमणीक रूप से बाबा हर बच्चे को शिक्षा देते हुए साथ ले चलते थे। कभी बच्चे अगर कहे कि बाबा हम तो थक गए आप तो भाग रहे हो, तो बाबा बहुत प्यार से कहते थे कि मेरे पास तो दो इंजन है, एक तो ब्रह्मा की आत्मा है, दूसरा है परमात्मा शिव बाबा की आत्मा है, तो दोनों दो इंजन है, डबल इंजनदारी हूं मैं, इसीलिए मेरा स्पीड ज्यादा है, तो इसलिए आप लोग भी मेरे साथ साथ भाग के चलो। तो ऐसे बहुत हंसी मजाक करते हुए बाबा सभी को लेके जाते थे। और कभी कभी कोई बच्चे गिर जाते थे तो बाबा कहते थे कि आपका योग ठीक नहीं है, बाबा के साथ योग नहीं था इसलिए गिर जाते थे। तो जो गिरते थे दादियां तो वो तो कहते थे कि हम तो गिर गए, हमको और ही हमारे ऊपर रहम करना चाहिए, फिर भी आप बाबा इतने सख्त रीति से हमें डांट लगा रहे हो कि योग में नहीं है। तो बाबा हर बात में शिक्षा देते थे, कहीं हम ये ना कहे कि हम योग में थे तो इसीलिए कर्म ठीक नहीं हुआ, कर्म में गड़बड़ हो गया, कर्म में गलती हो गई, ये कभी हम नहीं कह सकते। बाबा हमेशा कहते थे कि योग में रह करके अगर कर्म करते कोई गलतियां नहीं होती, योग में रहते अगर चलते तो कभी गिरेंगे नहीं। तो हर बात बाबा समझाते थे बहुत प्यार से, प्यार भी दे देते थे और शिक्षाएं भी बाबा बहुत प्यार से देते थे। लेकिन इतने प्यार और पालना देते हुए बहुत सारे समस्याएं भी आई, बहुत सारे परिस्थितियां भी आई, क्योंकि जब माउंट आबू में आए, ब्रिज कोटी एकदम माउंट आबू शहर से बाहर था, जंगली एरिया में था, तो वहां जंगली जानवर भी आते थे, सांप भी कभी कभी दिखते थे, और फिर ठंड भी बहुत होता था, और ब्रिज कोटी के पीछे ही स्मशान घाट था तो वहां प्रेत आत्माओं का भी असर हुआ करता था। तो इतने सारे समस्याएं होते हुए भी बाबा ने हर आत्मा के अंदर इतनी शक्ति भरी, इतना बल भरा कि जो प्रेत आत्माएं हैं कभी कभी दिखाई देते थे, लेकिन तपस्या इतना जबरदस्त था हर आत्मा की, सभी ब्राह्मण वत्सों की, तो वो प्रेत आत्माएं भाग जाती थी वहां से। और कोई भी सांप भी अगर दिखे तो बहुत प्यार से सभी दृष्टि देते थे, वो वैसे सांप ऐसे निकल जाते थे। और बाबा भी बहुत प्यार से सब प्रकृति को भी वाइब्रेशंस देते थे, तो इसीलिए ऐसा कोई प्रकृति का या प्रेत आत्माओं की जो भी समस्याएं आई बहुत जल्दी उसको भगा दिया गया। और तीसरी जो समस्या आई वो है भोजन की समस्या, क्योंकि यहाँ जब आए क्योंकि यहाँ जब रेशन राशन लेना शुरू किया तो यहाँ बहुत कम राशन मिलता था, तो कभी गेहूँ मिलता था तो कम होता था, तो फिर बाजरा या फिर चावल ऐसे मिलता था। तो इसीलिए जिस रीति से सभी यज्ञ वत्स पले बड़े थे, बहुत अच्छे घराने के थे, और फिर कराची में भी बाबा ने जिस रीति से सभी को पालना दी थी, राजकुमार राजकुमारियों जैसे पालना दी थी, काजू पिस्ता बादाम खिलाते थे बाबा कराची में, मखमल के कपड़े पहनाते थे, लेकिन यहाँ माउंट आबू में आने के बाद यहाँ की जो वातावरण यहाँ बदल गया था। क्योंकि जिन भाई बहनों ने कहा था कि हम मदद करेंगे, जिनके निमंत्रण पर पूरा यज्ञ यहाँ आया था, तो उन्होंने धीरे धीरे अपने आप को किनारा करना शुरू कर दिया। तो इसीलिए जो जिस रीति से मदद मिलना चाहिए था यज्ञ में, वो मदद नहीं मिल रहा था। इसके कारण से यज्ञ में बेगरी पार्ट आरंभ हो गया। तो बेगरी पार्ट जब आरंभ हो गया तो यज्ञ में बहुत कम पैसा आना शुरू हुआ, क्योंकि कराची में कोई ना कोई माताएं आती थी, वहां बाबा का भी प्रॉपर्टी था, तो वहाँ काफी कुछ आमदनी आती थी। लेकिन यहाँ माउंट आबू में आने के बाद कोई ऐसे सेवाएं नहीं होती थी, तो जिस कारण से इतने सारे कोई आमदनी नहीं होता था। तो इसीलिए जो भी राशन था उसी में सभी उसको ही यूज करते थे, और कुछ लोग बीमार भी पड़ते थे, उनका भी ख्याल रखना होता था, ठंड भी था, लेकिन सभी मिलजुल करके एक दूसरे के लिए त्याग करके जितना वो कम भोजन कर सकते थे उतना कम भोजन करते हुए सभी एक दूसरे को मदद किया, और एक दूसरे के सहयोग से आगे बढ़ते गए। लेकिन ये भी कहा गया था, कहा जाता है कि श्रीमद् भगवद गीता में ये प्रसंग भी आता है कि द्रौपदी की का जो देग है तो उसकी भी परीक्षा हुई थी। द्रौपदी की जो किचन, वो उसमें सभी भोजन करने के बाद थोड़ा भी बहुत ही एक दो दाना बचा था, तो अचानक कोई ऋषि मुनि आए भोजन करने के लिए, तो फिर वहाँ चमत्कार हो गया। तो जितना वो परोसना शुरू किया उतना फिर वो बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, तो किसी को भी भोजन कम नहीं हुआ। तो ऐसे ही बाबा के इस भंडारे में भी, सरस्वती माँ के इस भंडारे में कभी भी किसी के लिए तकलीफ नहीं हुआ। जितना जिसको चाहिए था उतना सब कुछ सभी को मिलता था। लेकिन ये भी एक प्रकार के हम कह सकते हैं एक तूफान आया, जैसे कोई भी जहाज में जब हिलता है तो जहाज में जो भी छुए होते हैं वो भाग करके बाहर आ जाते हैं, या कमजोर कोई ऐसे पंछी तो वो उड़ जाते हैं। ऐसे ही ये झाड़ का हिलना भी बहुत जरूरी था, क्योंकि जो कमजोर आत्माएं थी, जो जिनके अंदर निश्चय की कमी थी, वो आत्माएं कोई ना कोई बहाना बना करके अपने रिश्तेदारों के निमंत्रण आने पर वो चले गए, या फिर कोई पैसा कमाने के लिए बाहर चले गए। तो ऐसे करके कुछ लोग यज्ञ से दूर हो गए, लेकिन जो रह गए वो बहुत ही मजबूत, क्योंकि उन सभी आत्माओं के अंदर बाबा के प्रति अटूट निश्चय था। कई बार मम्मा आकर बच्चों को कहते थे कि आज रात को भोजन बनाने के लिए आटा नहीं है, क्या करेंगे? तो बच्चे बहुत प्यार से कहते थे कि मम्मा कोई हर्जा नहीं, हम घूमने गए थे ना जंगल में, वहां पेट भर के हमने फल खा लिया है, तो इसीलिए हम कुछ थोड़े फल लेके भी आए हैं, जो बूढ़े बुजुर्ग भाई बहने नहीं चले थे तो उनके लिए लेके आए हैं, वो हम खा लेंगे, या उससे हमारा पेट भर गया है, तो इसीलिए हमें भोजन करने की जरूरत नहीं है। ये बहुत वंडरफुल बात थी। सारा दिन दिन काम करते थे, भागते थे, सेवा करते थे, लेकिन फिर भूख नहीं लगती थी। उस समय तो कोई नौकर चाकर भी नहीं थे, सारा काम जैसे भाई बहने ही करते थे। सुबह जंगल में जाकर जो फल आदि खाए होते थे बस उतने ही हैं। ये कमाल था बाबा की, ऐसा लगता था कि पेट भरा हुआ है। फिर मम्मा बाबा तो मम्मा बाबा थे, वे बीच बीच में आकर पूछते थे, बच्चे इतना काम करते हो आप सभी, तुमको भूख तो नहीं लगी? तो हाँ, फिर ब्रह्मावत्स कहते थे, नहीं बाबा, हमें तो भूख नहीं लगी है, पेट भरा हुआ है। बाबा फिर मुस्कुराते थे और सबको थोड़ी थोड़ी टोली खिला देते थे। थोड़ी सी टोली से पेट जैसे भर सा जाता था। ऐसे कुछ साल तक चला बेगरी पार्ट, ऐसे कुछ महीने कुछ साल चला। फिर बाबा कहते थे कि आलमटी बाबा को याद करो, कुछ ना कुछ बाबा इंतजाम कर देंगे। तो कभी कभी बाबा कोई ना कोई किसी को टच करा करके मनी ऑर्डर भिजवा देते थे। तो 12 बजे दोपहर के समय मनी ऑर्डर आ जाता था। तो उससे फिर सामग्री खरीद करके या फिर आटा खरीद करके फिर भोजन बनाते थे। तो ये सभी के लिए निश्चय का पेपर था। जो निश्चय बुद्धि थे वो रह गए, और जो मन ने कम कम मन से कमजोर और कच्चे निश्चय बुद्धि वाले थे वो चले गए। तो दादिया कहते, तो हमें तो कोई संकल्प नहीं था, बाबा जो खिलाए वो खाते थे, जहां बिठाए वहां बैठते थे, जैसे सुलाए वहां ऐसे सोते थे। एकदम समर्पित बुद्धि हो करके दादिया चली। तो इसीलिए इतने महान आत्माएं वो बनी। तो बेगरी पार्ट में भी मम्मा बाबा बच्चों को ही पहले खिलाते थे, सब बच्चों के खाने के बाद ही मम्मा बाबा खाते थे। एक बार दिन के 12 बजे बजने वाले थे, खाने के लिए कुछ नहीं था। भोली दादी बाबा के पास आए और पूछा, बाबा आज आज क्या बनाए, क्या खिलाए? बाबा ने कहा, ठहरो, बाबा कुछ बेच देगा। इतने में कोई मनी ऑर्डर आया, बाबा ने आटा सब्जी सब मंगाई और सभी बच्चों को खिलाया। ये पार्ट भी देखा। अंतिम समय तक, लास्ट मिनट तक को कुछ है ही नहीं भंडारे में, कुछ भोजन बनाने के लिए। लास्ट मिनट कोई मनी ऑर्डर आता है, उन पैसों से जा करके आटा खरीदा जाता है, फिर भोजन बना करके सबको खिलाया जाता है। वो पार्ट भी सबने देखा। बाबा के पास रिपोर्ट भी आती थी। जब रोटी बनाते थे तो गिन के रोटी बनाते थे, कितने हैं, कितने लोग खाने वाले हैं। हर एक को कोई एक रोटी खाते थे, कोई दो रोटी खाते थे, तो इसलिए गिनती के रोटी बनते थे। तो फिर बाबा के पास रिपोर्ट जाती थी कि आज रोटी कम पड़ गई। तो बाबा रात्रि क्लास में पूछ लेते थे कि आज किसने लालच ज्यादा कर ली, तो रोटी ज्यादा खा लिया, एक रोटी भी किसने ज्यादा खा ली, तो फिर पता चल जाता था। इस प्रकार बाबा का ये ध्यान भी खिंचवाते थे कि हम खाने पीने पहनने के में भी नियमित अनुशासित हम कैसे रहे। बाबा ने ये भी सबको सिखाया। बेगरी पार्ट में भी बाबा सदा एक बल एक भरोसे में रहा करते थे। बाबा के चेहरे पर संपूर्ण निश्चिंतता थी। बाबा आलमाइटी बाबा को संदेश भेजा करते थे और पूछते थे, इन बच्चों के साथ क्या करें? बाबा ने संदेश भेजा, इनको एक मास भट्टी में बिठा दो, भोजन भी बहुत हल्का देना, सुबह थोड़ा दूध, शाम को थोड़ा दूध और दिन में एक चपाती देना। इस प्रकार बहुत हल्के भोजन का प्रोग्राम ऊपर से आया, हमारे शरीर भी हल्के हो गए और हमें बहुत ही अच्छे अलौकिक अनुभव भी हुए। आत्मा अनुभूति इतनी अच्छी हुई, इतना अच्छा लगता था कि परम धाम में सभी चले जाते थे। वहां बैठ करके अखंड शांति की अनुभूति करते थे। तो फिर एक बार होली के दिन आया, होली का त्योहार आया, तो बाबा को बच्चों को बहुत प्यार से जिलेबी खिलाना था, घेवर खिलाना था। बाबा ने मम्मा को कहा, तुम मेरे सिकलदे बच्चों को जिलेबी नहीं खिलाओगी? तो मम्मा ने कहा, जी बाबा, हाँ बाबा, जरूर खिलाएंगे। कि मम्मा कभी भी नहीं नहीं ना नहीं कहते थे। मम्मा को हालांकि पता है भंडारे में कुछ है ही नहीं खिलाने के लिए, फिर भी मम्मा ने कहा, हाँ बाबा, जरूर खिलाएंगे ना। लेकिन भंडारे में ना मैदा, ना चीनी, ना घी था, ये मम्मा जानती थी, तो भी कहा, बाबा जरूर खिलाएंगे। अब देखो कैसा चमत्कार होता है। एक माता माउंट आबू में रहती थी, वो श्री कृष्ण के पक्की भक्तिन थी। उसका प्यार बाबा के यज्ञ के साथ अथाह था। उसका पति भक्त था। वो कहता था, जो कुछ दान करना है वो हरिद्वार में जाकर के करना, लेकिन माता चाहती थी कि ब्रह्म कुमारी आश्रम में करे। दो चार दिन के बाद जब एक बार पति सोया हुआ था, तब भगवान ने साक्षात्कार कराया और उनको आवाज दी कि तुमको जो भी दान करना है ना, वो ब्रह्म कुमारी आश्रम में जाकर के करो। उस व्यक्ति ने फिर अपनी पत्नी को बताया कि मुझे ऐसा अनुभव हुआ, तुम ब्रह्म कुमारी आश्रम में जाओ, मैं तुमको ये पैसा देता हूँ, तुम यज्ञ माता को देकर आओ। वो माता दौड़ दौड़ कर करके मम्मा के पास आई और जो भी दान पुण्य करना था, खर्ची देनी थी, तो मम्मा को दिया। तो बाबा ने मम्मा को कहा, देखो मम्मा, शिव बाबा ने कैसे हमारे लिए प्रबंध किया, देखो बच्चों के लिए कैसे सब सामग्री बेच दी है। बच्चों को कहा कि भर भर करके, पेट भर के जिलेबी खाओ। ब्रह्मा बाबा को सदा मन में रहता था कि जब बाबा बैठा है तो हम चिंता क्यों करें। स्कूल का मालिक तो वो है, स्कूल उसको उसने खोला है, मैं और मम्मा तो टीचर है। कई बार ऐसे अनुभव हुए, अलमाइटी बाबा कभी किसी को टच करते और कभी किसी को टच करते, तो ऐसे यज्ञ का कारोबार चलता रहा। और एक बार सीतू दादी अपना अनुभव सुनाते हैं कि उनको बहुत बीमारी हो गई, डायरिया हो गया एक बार, तो डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि ये बचेगी नहीं। बाबा ने मुझसे कहा कि अब बाबा तुमको तुम ही बाबा ने कहा कि बाबा ही ठीक करे, अलमाइटी बाबा ही तुमको ठीक करे। अभी बाबा ने मेरे से पूछा, तुमने कब से नींद नहीं की? तो दादी ने कहा, 2.5 मास से मैंने नींद नहीं की। रात को खाया ठीक, खाना खाती हो? तो दादी ने कहा, नहीं बाबा, क्योंकि खाती हूँ तो उल्टी हो जाता है, तो खाना भी नहीं खा सकती हूँ। तो बाबा ने विश्व रतन दादा को कहा, गाय का दूध ले आओ। तो विश्व रतन दादा जाकर के गाय के दूध लेके आए और फिर सिरिंज, जो इंजेक्शन देते हैं ना, उसका सिरिंज तैयार किया। फिर बाबा ने मम्मा को बुलाया और कहा कि मम्मा, आप तो माँ हो, लोरी सुनाओ, ये बच्ची सो जाए। तो जैसे सुलाते गए और सिरिंज में दूध, गाय के दूध भर करके दादी को वो दूध के इंजेक्शन दिया और फिर दादी को सुला दिया। फिर 8 दिन तक बाबा ने मौसम्बी का रस पिलाया और उसके बाद 8 दिन आधी रोटी खिलाई, उसके बाद एक एक रोटी खिलाई और उसके बाद मैं बिल्कुल ठीक हो गई। तो ऐसे बड़ी बड़ी बीमारियां भी जो दादियों को आया कि अलमाइटी बाबा जवाबदार थे, तो अलमाइटी बाबा कुछ ना कुछ ऐसे रेमेडी देते थे और फिर दादियों को तबीयत ठीक करा देते थे, क्योंकि बाबा ऑलमाइटी बाबा जवाबदार थे ना, तो सभी दादियों को इतना निश्चय था बाबा के ऊपर, पूरा समर्पण बुद्धि था, तो इसीलिए निश्चिंत हो करके बाबा जो खिलाए, बाबा जिस रीति से रखा वो ऐसे रहने लगे और त्याग तपस्या के राह पर चलते रहे। और बाबा अपना धारणाएं भी बहुत ही गहरा कराते थे, स्थूल रीति से तो पालना तो देते ही थे, लेकिन फिर जो मोह का रग जो होता था वो भी न किसी में जाए, इसका भी ध्यान बाबा रखते थे। बाबा संबंधों में जितने न्यारे थे उतने ही न्यारे भी रहते थे। लौकिक भान और भावना बिल्कुल बाबा में नहीं था। यज्ञ में माँ और बाप, भाई बहनों के सिवाय और कोई भी रिश्ता ज्ञान यज्ञ वत्सों में नहीं होता था। अगर कोई ने किसी को चाचा चाची या भाभी रिश्तेदार के रूप में वो ऐसे बुलाते थे, तो फिर बाबा झट से उनको बुलाते थे और पूछते थे उनकी शादी किसने कराई है, ये चाचा कब से हो गया आपका, भाई है ना आपका, तो भाई बहन के अलावा कोई और रिश्ता नहीं जोड़ सकते थे किसी किसी के साथ। इस प्रकार लौकिक रिश्तों की स्मृति भी बच्चों में न रहे, ये बाबा का उद्देश्य था। अपने लौकिक माँ को भी माँ नहीं कहते थे, कोई अपने भाई बहन के रूप में ही सभी को संबोधित करते थे। पहले हमारे कपड़े पर हमारा नाम होता था, दादिया कहती थी कपड़े पर नाम लिखते थे, लेकिन नाम के साथ फिर सरनेम आता था, फिर कोई ना कोई देव भान आ जाता था, तो इसलिए बाबा ने नाम निकाल करके सभी को नंबर दे दिया है, नंबर दे दिया था, तो इसलिए सभी के नाम कपड़ों पर फिर नंबर लिखते थे, तो वो भी देव भान नहीं, कोई नाम भी नहीं, तो ऐसे वो एकदम उपराम बाबा सभी को लेके जाते थे। आत्मिक स्थिति का अभ्यास, आत्मिक दृष्टि का अभ्यास बाबा ने कूट कूट करके सभी के अंदर भरा। केवल एक माँ एक पिता, ब्रह्मा बाबा और मम्मा बस, और बाकी सभी भाई बहने, सभी को एक दूसरे को भाई और बहनों के रूप से ही, दृष्टि से ही देखते थे कि हमें भी इतना आत्मिक दृष्टि, इतना पक्का करने की जरूरत है, इतना पक्का करें लौकिक संबंधी नजर ना आए, ये लेकिन आत्मिक नाता, आत्मिक संबंध वो हमेशा याद रहे, वो मोह का रग भी न जुड़े किसी के साथ, वो हमें वो पुरुषार्थ करने की जरूरत है। अरुद्या पुष्प दादी एक बहुत सुंदर प्रसंग अपना बताते हैं, बहुत सुंदर इंसिडेंट है, क्योंकि दादियां तो इतनी भोली भाली थी, अपने लौकिक घरों में किसी ने कुछ भी काम नहीं किया था, रसोई में जाकर के कोई खाना भी नहीं बनाया था। तो ऐसे एक बार बाबा ने एक प्रोग्राम दिया कि सभी को कहा कि सभी एक एक करके मम्मा के पास जाना और मम्मा को पूछना कि क्या पुरुषार्थ करने की जरूरत है। तो मम्मा अपने कमरे में बैठे थे और एक एक ब्रह्मावत्स मम्मा के कमरे में जाते थे और मम्मा के साथ बात करते थे और पूछते थे कि मम्मा मुझे किस बात में पुरुषार्थ करने की जरूरत है, कैसे मैं पुरुषार्थ में आगे बढ़ूं। तो ऐसे एक एक आते थे, मम्मा कुछ ना कुछ ऐसे पुरुषार्थ के लिए कुछ बातें कहते थे, फिर वो फिर उस पर ध्यान रखते थे और उस पर पुरुषार्थ करते थे। तो अभी बारी आई रुद्र पुष्पा दादी की, रुद्र पुष्पा दादी मम्मा के पास सामने जाकर के बैठे और मम्मा और रुद्र पुष्पा दादी दोनों एक ही उम्र के थे, क्लास फेलोज थे, मम्मा को दादी के प्रति बहुत रेस्पेक्ट था। तो मम्मा कहने लगे कि नहीं आप तो संपूर्ण है, बहुत ज्ञानी योगी आत्मा है, दिन भर ज्ञान योग में तल्लीन रहते हो, तो आप में कोई नुक्स नहीं है, कोई कमी कमजोरी नहीं है। तो बहुत ऐसे मम्मा बोलने लगे, लेकिन दादी तो कहने लगे नहीं मम्मा, मुझे पुरुषार्थ में बहुत आगे बढ़ना है, प्लीज आप बताइए कुछ ना कुछ पुरुषार्थ की बातें बताइए, किस बात में कमी है मेरी, प्लीज आप बताइए। बहुत बोलने के बाद मामा बहुत प्यार से कहा कि दादी आप ज्ञानी तो आत्मा है, योगी तो आत्मा है, दिन भर आप कुछ ना कुछ लिखते रहते हो, पढ़ते रहते हो, योग में बैठे रहते हो, तो ज्ञानी तो आत्मा योगी तो आत्मा आप ऑलरेडी है, लेकिन एक बात की कमी है, वो है यज्ञ सेवा, आपको यज्ञ सेवा करने की जरूरत है। तो दादी ने उसी घड़ी स्वीकार कर लिया और कहा मम्मा को, ठीक है मम्मा, मैं आज से यज्ञ सेवा स्थूल सेवा जरूर करूंगी। जैसे ही मम्मा के कमरे से बाहर आए तो बहुत सारी बहनों को पता चला कि मम्मा ने हृदय पुष्प दादी को कर्मणा सेवा के लिए कहा है, तो सभी अपने अपने डिपार्टमेंट में खींचने लगे, आप मेरे डिपार्टमेंट में आओ, मेरे पास सेवा है, मेरे पास सेवा है। फिर मम्मा ने कहा कि नहीं, सुबह से शाम तक टाइम टेबल बना के दिया, 9 से 10 बजे इस डिपार्टमेंट में जाके सेवा करो, 10 से 12 बजे इस डिपार्टमेंट में जाके सेवा करो, और बीच में ए भी सेवा मिली, एक कमरे को व्हाइट वॉश करना था, उन दिनों में कोई पेंट नहीं करते थे, व्हाइट वॉश चूना लगाते थे, चूना व्हाइट वॉश करते थे, तो दादी को पता नहीं है कैसे चूना लगाना होता है, कैसे व्हाइट वॉश करना होता है। तो अभी तो सेवा मिली है तो मुझे तो करना होगा, तो दादी गए कमरे में और वो वहां चूना का बाल्टी था, तो दादी ने हाथ लगा दिया, हाथ डाल दिया चूने में, हाथ डाल दिया तो जलने लगा, जलने लगा तो उस जल रहा है तो भी हाथ से फिर चूना लगा रहे हैं, चूना व्हाइट वॉश कर रहे हैं, कोई अचानक दादी आई और देखा कि दादी क्या कर रहे हो, पूरा हाथ जल रहा है तो भी व्हाइट वॉश किए जा रहे हैं, कि बाबा तक बात चली और फिर बाबा बहुत प्यार से दादी के हाथ को धुलवाया, उसके मुरम्मत लगा कर किया, ऑइंटमेंट सब दवाइयां लगाई, और फिर अगले एक हफ्ते तक बाबा ने अपने हाथों से दादी को खिलाया, सुबह शाम दोनों टाइम बाबा को अपने बाबा ने अपने हाथों से दादी को भोजन कराया, क्योंकि इतनी भोली भाली दादियां, कुछ भी पता नहीं लेकिन सेवा करना है, इतना उमंग उत्साह से वो करते थे, तो बाबा ने भी बहुत प्यार दिया सभी दादियों को, सभी आत्माओं को। तो इन दादियों की जीवन से, बाबा के जीवन से हमें प्रेरणा लेने की जरूरत है, उनके जैसे हमें त्याग तपस्या और सेवा करने की जरूरत है। ओम शांति।
श्रद्धा सुमन।